તારીખ 15/8/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 153
વિષય ગહન ભી હૈ ઔર વિશાલ ભી હૈ. મિથ્યાત્વ અવસ્થા મેં સમ્યક સન્મુખ મિથ્યાત્વ અવસ્થા મેં સમ્યક્ત્વ અવસ્થા મેં ઔર ઉપર ઉપર કે ગુણ સ્થાન મેં પ્રત્યેક ગુણ અપના જો નેચર હૈ અપના જો સ્વભાવ હૈ ઉસકો પરિણમન કરતા હૈ. કભી એક દૂસરે કે પૂરક રૂપ મેં ભી પરિણમન કરતે હૈ તો કભી સ્વતંત્ર ભી પરિણમન કરતે હૈ જિસમે એક દૂસરે કા કોઈ સંબંધ નહીં રહેતા. એ ભાવો કી દુનિયા અધિક રૂપ સે સમજની હો તો એ સભી ભાવ અનુભવ ગોચર હોતે હૈ. તો उसके अनुभव को देखे, उसके अनुभव को अनुभव से समझने का प्रयास करिए, जिससे इन भावों का परिचय होगा और परिचय होने से उसका विज्ञान भी समझ में आएगा कि कब क्या कैसा होता है. दृष्टांत ले लें कि अनादि से जीव को अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो बात प्रसिद्ध है. सम्यक ज्ञान प्रसिद्ध हुआ ने, प्रकट हुआ ने, प्राप्त हुआ ने, इसके पहले अनादि से मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है. फिर भी उस ज्ञान में सर्वथा विपरीतता है ऐसा नहीं बनता. मिथ्यात्व अवस्था में भी ज्ञान जब विवेक करता है तब वो अपने आत्म कल्याण की दिशा में प्रवृत्ति करने लगता है. पर जब ये प्रवृत्ति करने लगता है तब दूसरे दूसरे गुण उसका अनुकरण करने लगता है. इसलिए शास्त्रकारों ने, शास्त्रकार मैंने जो इस विज्ञान को जानते हैं अच्छी तरह, उन लोगों ने इस बात को प्रसिद्ध किया है, यानी एक उपमा भी दिया है कि ज्ञान है वो सभी गुण में नेता के रूप में काम करता है. जैसे नेता एक होता है और इसके पीछे चलने वाले अनेक लोग होते हैं. गांधी जी अपने नेता थे तो सारा देश इनके पीछे चला. ऐसे ज्ञान गुण में वो बात है. बाकी के जो चार गुण हैं मुख्य, उसमें विपरीतता पूरी पूरी है. उसमें विपरीतता पूरी पूरी है, इसलिए दूसरे गुण आत्मकल्याण में साधनभूत नहीं होते. जब तक ज्ञान साधन होता है, पंचाध्यायी करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ है द्रव्यानु योग का और अध्यात्म का, उसके उत्तरार्ध में एक 401 नंबर की गाथा है. ऐसे दोनों ग्रंथ के मिलकर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलकर के 1700-1800 गाथा है. उसमें उत्तरार्ध में मैंने दूसरे भाग में एक गाथा है, मुमुक्षु के लिए प्रयोजनभूत है, इसलिए मैं इस गाथा को दोहराता हूँ कि ज्ञानम एकम साधनम. मुमुक्षु कोई साधन नहीं है इनके पास, न कोई चारित्र में वितरागता है, न श्रद्धा में सम्यक दर्शन है, पूरा मिथ्या दर्शन है. पर सुख गुण दुख रूप परिणमन कर रहा है, पुरुषार्थ राग में और पर पदार्थ के कार्यों में लग रहा है, उनकी दिशा विपरीत है, उल्टी है। चारित्र में राग है, द्वेष है, मोह है, तो ज्ञान थोड़ा खुला है, पूरा खुला भी नहीं पर पूरा बंद भी नहीं, पूरा अशुद्ध भी नहीं और पूरा शुद्ध भी नहीं। तो यहाँ एक ही साधन है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ज्ञानम एकम साधनम साधन आदि विधौचित। आत्मा के साधन की विधि के विषय में गहराई से विचार करने में आए या वैज्ञानिक तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने में आए तो ज्ञान एक ही साधन है। ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौचित स्वानुभूति एक हेतुश्च तस्मात् तत्परमं पदम। स्वानुभूति का एकमात्र हेतु यानी कारण होने से ज्ञान को परम पद कहने में आया है या ज्ञान को भगवान भी कहने में आया है, क्योंकि भगवान परम पद में होता है और परम पद भगवान का ही होता है, इसलिए ज्ञान ही भगवान है। लेकिन कौन सा? कि जो सही विवेक करे वही ज्ञान, अविवेक करने वाला ज्ञान उतना ही आत्मा को अहितकर होता है कि जिसके बराबरी में कोई अहितकर होता नहीं है। इसलिए ज्ञान को सही जगह पे लगाए, सही दिशा में लगाए, सही विवेक ज्ञान में पैदा हो गए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसके अनुसंधान में एक प्रश्न है कि चाहे जैसी परिस्थिति में यथार्थ निर्णय ज्ञान ले सके, ज्ञान कहो बुद्धि कहो, यथार्थ निर्णय लेने ऐसी क्षमता ऐसी योग्यता ऐसी शक्ति पर्याय में कैसे प्रकट हो, यानी कैसे गढ़े केवल रीते केड़वाए, आ प्रश्न है। उस विषय में एक ही मास्टर की है, यानी अगर हमारे ज्ञान में एक ही जगह केंद्रित होने का कोई केंद्र बिंदु होता है तो ज्ञान है, उसमें कहीं गलती नहीं होगी। वरना बुद्धि का विषय इतना लंबा चौड़ा है कि बुद्धिमान भी कहाँ गोथा खाता है खुद को इसको पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे बुद्धि वाले गोथा खाते हैं, फिर भी एक केंद्र बिंदु जो है वो लक्ष्य में रहे, लक्ष्य वहीं केंद्रित रहे वही बिंदु पे, तो आपको कहीं भी गलत निर्णय होने की संभावना नहीं रहेगी। वो केंद्र बिंदु क्या है? कृपालु देव ने 679 पत्र में आशय शब्द से वो बात कहा है कि ज्ञानी की वाणी में जो आशय होता है ऐसा आशय अज्ञानी की वाणी में कभी भी नहीं होता। चाहे अज्ञानी कितना भी विद्वान हो, चाहे अज्ञानी कितना भी वक्तृत्व कला को धारण करने वाला हो, फिर भी जो आशय ज्ञानी की वाणी में होता है उसकी तुलना में उसकी बराबरी में अज्ञानी की वाणी कभी नहीं होती है। यहाँ से ज्ञानी अज्ञानी पहचाना जाता है। तो ये निर्णय लेने की शक्ति यथार्थ मुमुक्षुता में आती है, पर सम्यक ज्ञानी अज्ञानी को तो होती ही है, क्योंकि वो तो यथार्थ मुमुक्षुता से भी आगे बढ़ा हुआ है। वो केंद्र स्थान है एक अपना आत्म कल्याण करना, ऐसा ध्येय वही इसका केंद्र स्थान है। ये इस प्रकार का ध्येय, ऐसा ध्येय नहीं होने से जीव यथार्थ निर्णय नहीं ले सकता, उसके निर्णय में गड़बड़ रहती है। इसका कारण एक ही है कि ध्येय शून्य ज्ञान की जो प्रवृत्ति है तो कभी कहाँ गुथा खाएगी उसका पता नहीं लगेगा। उपयोग को, ज्ञान के उपयोग को कभी कभी पतंग की उपमा दी जाती है, वो पतंग की पढ़ाई चढ़ती है, कभी इधर पतंग लुढ़कता है, कभी इधर भी लुढ़कता है, लेकिन डोरी जिसके हाथ में बराबर है तो उसको इतना गुथा नहीं खाने देगा, वो नीचे जमीन पर आ जाए। तो हम एक जैसे कला है, पतंग चढ़ाने की भी एक कला है, ऐसे उपयोग को कंट्रोल करना, ज्ञान को कंट्रोल करना ये कला है। तो वो कला जिसके हाथ में आती है उसका निस्तार हो जाता है, तो संसारा संसार समुद्र को तीर जाता है। ऐसे संसार समुद्र को तीरना आसान नहीं है, फिर भी अगर ध्येय ठीक बना और ऐसे कोई सदगुरु भी मिला तो जीव संसार समुद्र को आसानी से तीर सकता है। और ऐसे अनंत जीव तीरे भी हैं, तो हम नहीं तीर सके वो बात बन नहीं सकते, हम भी तीर सके उतना ही नहीं, हम सबसे पहले तीर के निकल जाए आगे, ऐसा उत्साह आना चाहिए। तो ऐसी क्षमता जो है, क्षमता को कहते हैं शक्ति, एबिलिटी, तो सम्यक ज्ञान में आती है। और जैसा ध्येय की पकड़ होती है, प्रयोजन की पकड़, आत्महित के प्रयोजन की पकड़ होती है, उनको यथार्थ निर्णय आता है, उसका ज्ञान मध्यस्थ होता है और इसका ज्ञान विशाल भी होता है। दोनों उसमें दोनों प्रकार के गुण ऐसे ज्ञान में आ जाते हैं। और चौथा प्रकरण में स्वाध्याय पत्रांक 449 का आत्मा पुराण है। कृपालुदेव लिखते हैं कि हमारे समागम का अंतराय जान करके चित्त को प्रमाद का अवकाश देना योग्य नहीं। हमारे समागम में तो आप प्रमाद नहीं करते हैं, बराबर स्वाध्याय आदि में लगते हैं, लेकिन हम नहीं हुए तो शिथिलता को लेकर के कहीं भी मन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। और परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होना देना चाहिए। निवृत्ति के क्षेत्र के प्रसंग की न्यून होने देना योग्य नहीं, यानी निवृत्ति निकट के बाद निवृत्ति निकट निवृत्ति क्षेत्र में जाना चाहिए। आत्मकल्याण के मार्ग में, उपाय में, इलाज में हम आगे बढ़ें और बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, इसकी पूरी दरकार के साथ, पूरी जांच तलाश के साथ ऐसे क्षेत्र में सत्संग की उपासना करनी चाहिए। कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है, यानी भविष्य की अनेक प्रकार के आशा अपेक्षाओं महत्वाकांक्षाओं लेकर के संसार की प्रवृत्ति भी मत करिए। ऐसा है कि संसार में तो ऐसा बोला जाता है कि जीव कैसे जीता है, कि आशा के डोरी पर उसका जीवन चलता है, यानी एक पीछे एक वो आशाएं करता रहता है, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे और ऐसे इनकी प्रवृत्ति चलती है। और इसके फलस्वरूप भी उनको संसार परिभ्रमण चाल रहता है। ज्ञानी के जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, मुक्ति के मार्ग प्रति मोक्ष को ले जाते हैं, वो तो ऐसा कहेंगे कि कामना पूर्वक प्रवृत्ति मत करिए, आशा अपेक्षा रख करके प्रवृत्ति मत करिए, जो भी उदय आया है उनको भविष्य की अपेक्षा बिना वैसे ही जितना उपयोग चले उसको निपटा देना। क्या? उसको निपटा देना। तो एक उदय को पूरा करने का उतना ही उसमें कोई विचार है या अभिप्राय है कि उदय को जैसे तैसे भी खत्म करो, क्योंकि वो पूर्व संचित कर्म के उदय है। उस उदय में आशा अपेक्षा रख करके हम नया कर्म बंधन कर लेते हैं और वहीं आगे जाकर के अनेक प्रकार के और कर्म के बंधन में निमित्त हो जाते हैं। जिसको आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, उदासीनता से जो कर्म भोगते हैं उनको ऐसे कर्म नहीं बनते जो भविष्य में भी उसको परेशानी हो, कठिनाई हो, ऐसा नहीं बनता। इसलिए कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है। अब ये प्रश्न कर सकते हैं तो कैसे हो, कोई भी प्रवृत्ति है तो इसका फल भी तो कामना रहेगी ही रहेगी। तो ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोई मैनेजर है, सभी काम को काम पर लगाने का जिसका ड्यूटी होता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में होता है, तो जो भी डिसीजन लिया गया उसको एग्जीक्यूट करो, तो क्या करेगा? तो जो भी निर्णय लिया है उसका अमलीकरण करो, उसका अमल करो, उस अमल करते हुए उसकी सफलता हो या निष्फलता हो इनका जिम्मेवार वो नहीं है। उनको तो जो काम सौंपा गया है तो काम वो बराबर प्रमाणिकता से करता है, निष्फलता हुई तो बता देंगे कि हम क्या करें, हमको ऐसा करने का था हमने ऐसा किया, सफलता हुई तो उनको कोई लेना देना नहीं है, निष्फलता हुई तो भी लेना देना नहीं है, उसको कामना नहीं है फल के। ऐसे उदय है तो उदय में भी इस तरह से प्रवृत्ति करना चाहिए कि जैसे कोई मैनेजर प्रवृत्ति करता है, उसको मैनेज करो लेकिन कामना पूर्वक मत करो। बस आपका जो रस है, इंटरेस्ट है, वो लिमिटेड हो जाएगा एकदम, वरना आशा और अपेक्षा का घोड़ा हवा में जाएगा, हवाई जहाज की तरह, और इतना रस आएगा, इतना रस आएगा और इतना कर्म बंधन हो जाएगा कि जिसका परेशानी का हिसाब किताब निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कल चला था, कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है ऐसा विचार करके जैसे हो सके वैसे अप्रमत्तता को और परस्पर का समागम को, निवृत्ति के क्षेत्र को और प्रवृत्ति के उदासीनपना को आराधन करना। इस वक्त में चारों बात बात ले लिया है। प्रवृत्ति के कार्य में हमारे आत्मा के हित परहित की सावधानी रख करके प्रवृत्ति में प्रवेश करना, तो तीव्र रस से प्रवृत्ति नहीं आएगी, नहीं होगी। जैसे हम डेली रूटीन में खाने के टाइम में खाना खाने को बैठते हैं, ये तो एक डेली रूटीन है। दोपहर को शाम को जो भी खाने खाने का समय होता है हम भोजन के लिए बैठ जाते हैं, तो उसे उदय है। पूर्व कर्म के कारण के सुधारो लागू हुआ है, क्या है सुधारो लागू हुआ है, उसके टाइम में भूख लगेंगे, खाना भी खाएंगे। खाना खाने की जो प्रवृत्ति है उसमें हमारे परिणाम कितना रस से काम करता है। अगर आत्महित की हमें दरकार है तो तीव्र रस से नहीं खाना खाने का मन, आत्महित का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। कोई एकाध चीज में इतना रस ले लेंगे तो हमारा वो रस लेना तो वास्तव में गांव में तो उस वक्त मिठास आई लेकिन खाया है ढेर खा लिया। आप कहेंगे कि वो तो अच्छा लगा, ढेर कैसे बता रहे हैं, तो ये वेदना का कारण होगा। असाता वेदने का कर्म बंधुआ होता है, आपको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। उसी वक्त असाता वेदने का कर्मबंध होता है और वो असाता वेदने उदय भी आएगी, शरीर में रोग पैदा होगा, उसकी पीड़ा सहन करनी होगी। इसके पहले वेद विज्ञान से ज्ञान वेदन में अगर जीव नहीं आया तो ये पीड़ा नहीं चाहते हुए भी भोगे बिना चलेगा नहीं, ये पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। इस तरह से भोगनी पड़ेगी क्या आप यहाँ से वेदना से उपयोग हटा सकेंगे भी नहीं, वही उपयोग लगा रहेगा और पीड़ा और दुख का अनुभव अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। अब अच्छे अच्छे चीजें बना करके खाना खाना के नहीं खाना, अच्छी अच्छी कोई है ही नहीं, सब कल्पना है जीव के, कोई चीज अच्छी नहीं है न कोई चीज बुरी भी है। जीव कल्पना करता है कि हमको ये चीज अच्छी लगती है, वास्तव में जीव की कल्पना है। चीज अच्छी होती तो सबों को अच्छी लगे, पर चीज अच्छी नहीं होती तो सबों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। हाँ, पहले से पूर्वग्रह हो जाता है कि ये चीज अच्छी है, वही चीज का खाने में उदय आता है तो रस को रोक सकता नहीं है। क्यों नहीं रोक सकता, तो पूर्वग्रह पूर्वक वहां सुख का अनुभव होगा, ये मेरे लिए सुखदायक है आनंददायक है, ऐसा अभिप्राय पूर्वक जब वो चीज का प्रयोग होगा रस आए बिना रहेगा, फिर रस आ जाएगा, वही बंद है। भाव में विभाव का रस तीव्र होना यही बंद है, ये बंद तत्व है। यहाँ जीव पूरा पूरा इस वक्त प्रतिबद्धता को प्राप्त करता है, इसलिए उसको प्रतिबंध कहो या संबंध कहो या बंध कहो, एक ही बात है। हाँ, अगर हमको ये खाना खाने में, खिलाने में, खाने में और खिलाने में ठीक है ऐसा अभिप्राय रहा तो एक शिष्टाचार से कहना और थोड़ा लीजिए अलग बात है, लेकिन अभिप्राय रखना के लिए जितना ज्यादा खाएगा उतना अच्छा है। अभी हमको कोई आग्रह करते तो हम प्रश्न करते हैं कि ज्यादा खाने से क्या फायदा है, पहले समझाओ फिर खाएंगे। और एक ट्रेडिशन बन गया है, एक रूढ़ी बन गया है कि जो घर पे आए मेहमान उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाओ। वो तो विकल्प सह जाएगा, होने वाला होगा, आपके विकल्प अनुसार सब होता है, ऐसा थोड़ी ना बनता है। विकल्प आएगा, शाम को रसोई बनना है, फलाना फलाना दो चार चीज जो बनाना है, विकल्प आ जाएगा, जो बनने वाला हो बनेगा, नहीं बनने वाला हो नहीं बनेगा। हम पकड़ रखे वो गड़बड़ है, हमें पकड़ होनी नहीं चाहिए, यही खाना है और यही खिलाना है, वो पकड़ हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बनाओ तो ठीक, वो बनाओ तो ठीक, कोई भी बनाओ तो ठीक, हमको तो पेट को या शरीर को किराया देना है। क्या जिस मकान में हम रहते हैं प्रमाणिकता से किराया दे दो, फिर ऐसा किराया देना वैसा नहीं देना, बड़ी नोट देना छोटी नोट मत देना, पुरानी नहीं देना नई नोट देना, ये कोई तरीका है क्या? इससे क्या फायदा है? कोई भी किराया दे दो। ये शरीर थोड़ा पुद्गल चाहता है, पुद्गल से बना हुआ है तो उसको थोड़ा खड्डे में थोड़ा पुद्गल डाल दो, बात खत्म। इससे ज्यादा लगाव क्यों रखे? तो कोई भी बनाओ ना, ये बनाओ या वो बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बने इसमें फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क पड़ जाता है क्या? कोई भी बनो, हम हमारे चिकने परिणाम क्यों करें?
अपनापन रख के बनाते हैं।
आगे पीछे इष्ट अनिष्ट का अभिप्राय मत रखिए, ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसा अभिप्राय मत रखिए, शायद हो होने दो। हमको वहां ज्यादा परिणाम को ठीकना नहीं करना है, रूखे परिणाम से उदय को निपटा लो, कोई भी उदय को, चाहे खाना हो या खाना बनाना हो, कोई भी उदय हो रूखे परिणाम से निपटाओ उसको, बात खत्म।
वेदनीय बनती है ऐसे रस लेने से, जो अशाटा वेदनीय बनती है वह इसी भाव में उदय में आती है या साइंस के अनुसार अलग?
बहुभाव कर्म, दूसरे भोग में उदय में आते हैं। हम जो भोग रहे हैं वो भी पूर्व भोग से किए हुए हैं। बहु भाग ऐसा होता है रेयर केस में इसी भोग का किया हुआ इसी भोग में उदय में आता है, बाकी पूर्व भोग में किए हुए कर्म अभी उदय में आते हैं। राग द्वेष मोह पूर्वक इसका भोगना होता है और नया कर्म बन उसी वक्त होता है। तो ये प्रोजेक्टर में फिल्म के दो रोल होते हैं ना, एक जगह से अतीत में होता है, दो रोल होता है, एक जगह से निकलता है दूसरी जगह वाइंड होता है। को आराधन करना और अप्रमत्तता को मैंने शिथिलपना को छोड़ करके परस्पर मुमुक्षुओं का सत्संग समागम रखना, निवृत्ति क्षेत्र में भी सत्संग विशेष रूप से करना और प्रवृत्ति जो भी हो वहाँ उदासीनता रखना, कोई भी प्रवृत्ति हो उदासीनता से करना, यानी अपनत्व रख करके नहीं करना। मैनेजर होके काम कर लो, मालिक मत बनो, नौकर बन जाओ क्या, बस फिर कोई उपाधि नहीं है। नौकर को कोई उपाधि होती है? हाँ, मालिक भरे भले ही ऑफिस पे नहीं आए, बीमार हो घर पे रहना पड़ता है, डॉक्टर बोलेगा कि आपको बेड रेस्ट में रहना है और ऑफिस में मत जाना, लेकिन घर बैठा बैठा पूरा काम की उपाधि तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मालिक है। कुछ नहीं तो हेलो हेलो उससे भी बात कर लेगा, क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, क्या हुआ उसका, क्या हुआ, तो उपाधि पूरा लेकर के बैठता है। काम करने वाले काम करते हैं, काम करने वाले को उपाधि नहीं, नहीं करने वाले को उपाधि ज्यादा, ये गड़बड़ है हमारी। इसलिए नौकर बन जाना, मैनेजर बन जाना, स्वामित्व छोड़ देना, शास्त्र भाषा में क्या कहते हैं, ज्ञानी को स्वामित्व नहीं होता, समझदार का निर्जरा अधिकारी बात बोलता है, कि समय दृष्टि निर्जरा बनता है, उसको निर्जरा उदय की प्रवृत्ति करते हुए भी निर्जरा होती है, क्योंकि उसको स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व नहीं होने से रूखे परिणाम है, चिकने परिणाम नहीं होते, उदासीन भाव से वो करते रहते हैं। उसमें क्या है कि हम स्वामित्व रखे तो भी ये चीज हमारे कंट्रोल में तो रहने वाली नहीं है। अभी स्वामित्व नहीं छोड़े या नहीं छूट सकता है तो क्या एक दिन नहीं छूटने वाला है क्या? उस दिन क्या होगा? बहुभाग मनुष्य बेशुद्ध अवस्था में प्राण त्याग करते हैं मृत्यु के वक्त। क्यों बेशुद्ध हो जाते हैं? कि उसको अपने रोग वेदना से या किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट से कोई भी हुआ पता चल जाता है, कब मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा इतना वो सवाल नहीं है, उसने बहुत स्वामित्व जमाया हुआ है तो स्वामित्व उसको छोड़ना पड़ता है, उसके कब्जे में कंट्रोल में कोई चीज नहीं रहती। ये परिस्थिति है। चाहे तो समझदारी से अभी छोड़े, स्वतंत्र रूप से या तो स्वतंत्र होकर के आगे जाके छोड़े। स्वतंत्र दिन स्वतंत्रता का दिन है क्या नहीं है? आत्मा के स्वतंत्रता को उजागर करो और परतंत्रता छोड़ो, पराधीनता छोड़ो। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता। परिस्थिति जो वास्तविक परिस्थिति है उसकी वास्तविकता का अनुभव करो। कल्पना करके स्वामित्व हम कर बैठे तो कितना नुकसान होगा या कितना दुख होगा, इसका हिसाब किताब कोई है क्या? वो बात हमारी समझ में नहीं होने से हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इसलिए हम अपने नुकसान को समझे, उतनी ही तो बात है। उदय हमारा शेठ है, वो बैलगाड़े को चलाने वाला है और हम एक बैल है, वो जहाँ चलाना चाहे वो चले। बैल को क्या है, गाड़ीवान है, वो जहाँ चलाना चाहते हैं उसको चलना पड़ता है। ऐसे उदय में जीव को चलना पड़ता है, ज्ञानी को भी चलना पड़ता है। वो उसका पूर्व कर्म का निबंधन है, बंधन में तो उसको भी रहना पड़ता है। लेकिन वो जैसा उदय आता है ऐसे परीक्षानुचारी होकर के उदय में चल जाते हैं, जबकि अज्ञानी कर्ता बुद्धि से ऐसा करूं वैसा नहीं करूं, ऐसा करूं वैसा नहीं करूं, फिर भी होने वाला ही होता है। इसका मतलब नहीं कि वो कुछ कर सकता है, ऐसा तो है ही नहीं। होता है तो होने वाला है तो ही होता है, लेकिन अधिक होता है नुकसान वो कर्मबंध का होता है या भावी में दुखी होने का होता है भविष्य में। तो विवेक करने की बात है ये तो। अपने आप को दुख की खीर में, खाई में हम धकेल नहीं दें, उतना ही हमें विवेक करना है, वरना हम ही उस खाई में पड़ने के लिए दौड़ लगाएंगे तो कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। इसलिए प्रवृत्ति के उदासीनपना को आराधन करना, प्रवृत्ति में उदासीनपना को आराधन करना, विचार करना ऐसा नहीं लिया है, आराधन करना ऐसा लिया है, अमलीकरण की बात है।
वो स्वामीपना है, वो अभिप्राय की भूल है, तो वो अवलोकन से इसमें किस प्रकार का अवलोकन वहां पे करना है स्वामीपना छोड़ने के लिए?
अवलोकन को करो तो उस वक्त तो रस टूटेगा। स्वामीपना में जो रस आता है वो अवलोकन से रस टूटेगा और अवलोकन से अभिप्राय भी समझ में आएगा। वो अभिप्राय टूटेगा पूर्ण शुद्धि का ध्येय मानने से, क्योंकि हमको ध्येय प्रति परिणमन करना है। वो अभिप्राय बदल गया कि हमको तो पूर्ण शुद्ध होना है, अभिप्राय पूरा बदल गया। देख लीजिए हम स्वामित्व में परिणमन कर रहे हैं, अब इस विषय की उलझन मुंझवट हमें कितनी है। मेरे को एक बात और पॉइंट आउट करना है इधर, आप प्रश्न करते हैं कहाँ खड़े रह करके, अगर हमें इस विषय की मुंझवण है, उलझन है, कुराहट है, सो तो ये प्रश्न जो यहाँ यहाँ उलझन में खड़े रह करके करेंगे तो ये अभिप्राय कहाँ से मिटता है, ये विषय आजकल हमारी चर्चा में बहुत आया है। तो अपनी उलझन होती है वो उलझन मिटाने का प्रयोजन होता है तो वो बात पकड़ में आ जाती है, वरना क्या होगा कि प्रश्न आएगा उत्तर मिलेगा, ये प्रश्न पूरा समाधान नहीं होगा, ये प्रश्न का पूरा समाधान नहीं होगा, सारे बार बार ये प्रश्न उठता रहेगा। ये जो आत्म उन्नति का जो क्रम है उस क्रम के प्रारंभ से अभिप्राय बदलने का ही प्रोसेस होता है। जो हमारा गलत अभिप्राय जहां जहां हमारा मिसकॉन्सेप्ट है वो टूटता जाएगा। वेदना में भी एक कार्य होता है कुछ विषय में, फिर पूर्णता के लक्ष्य में बहुत काम होता है, फिर जो अवलोकन होता है उसमें ज्यादा होता है, और जो आत्मस्वरूप की पहचान होती है तब तो पूरा अभिप्राय बदल जाता है। ये मुमुक्षु की भूमिका है कि अभिप्राय बदलने की भूमिका है। आचरण तो मोक्ष मार्ग में होगा, वितरागता का आचरण, क्योंकि वितरागता उपाधि है, पूर्ण शुद्धि उपाधि है, ये शुद्धि तो मोक्ष मार्ग में प्राप्त होती है, लेकिन मोक्षता में पूरे पूरे अभिप्राय है वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब लिखते हैं कृपाल देव कि जो प्रवृत्ति यहाँ पर उदयमा है, यहाँ पर मैंने हमको उदयमा है, उदय रूप है, तो ऐसा नहीं लिखा कि हमारा उदय है, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर जो उदय चल रहा है, जो प्रवृत्ति यहाँ पर उदय में है, उदय का क्षेत्र में उदय है, वो हमको लागू नहीं पड़ता क्योंकि हमारा उदय है, ऐसी उपाधि हमें होती नहीं, क्योंकि उदय उदय में होता है, हम हमारे में सुरक्षित हैं, हमारे में उदय का कोई प्रवेश नहीं, कोई संबंध नहीं, हमारा उदय है ही नहीं, उदय उदय के घर का है, हम तो सब से अलग हो चुके हैं। मैं तो अनुदय स्वरूप हूँ, मैं अनुदय स्वरूप हूँ, इसलिए उदय मेरे में नहीं है। जो प्रवृत्ति यहाँ पर उदय में है वह दूसरे द्वार से चले जाने पर भी न छोड़ सके ऐसी है, फ्रंट गेट से तो निकल नहीं सकते लेकिन पिछले दरवाजे से भी हम नहीं चले जा सकते, ऐसे इस प्रकार का उदय है। मैंने उदय में रहना ही पड़ेगा ऐसा दिखता है, ऐसी प्रवृत्ति 25 वर्ष की उम्र में बहुत इस प्रवृत्ति का अधिक उदय आया है। मैंने जैसे कोई काउंटर बिजनेस होता है, काउंटर पर ग्राहक की लाइन खड़ी है, क्यों खड़ी है, दो चार को निपटाते हैं, छह आठ और आ जाते हैं। मैंने काम की भीड़ बहुत थी तो अगले दरवाजे से तो जाने का मौका था ही नहीं, वहां तो रोक लगा रखा था, फिर पिछले दरवाजे से भी उसको छोड़कर जा सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। वेदन करने योग्य है, भोगने योग्य है, इसलिए अनुसरण करते हैं। हमारे पूर्व कारण के पूर्व परिणामों के कारण से बंधे हुए कर्म हैं, इसलिए हमको ये भोग लेनी चाहिए, इसलिए उसके अनुसरण करते हैं, भोगते हैं, ऐसा नहीं लिखा। परीक्षानुचारी होकर के अनुसरण कर लेते हैं, वेदन करने योग्य है, हमारा ही हृदय है, हमने पूर्व कर्म बांधा है, अपराध तो हमारा था, आने दो, अनुसरण कर लेंगे, इसमें हमें कोई आशा अपेक्षा है ही नहीं, उदासीनता से अनुसरण करते हैं। तथापि अव्यापार स्थिति में जैसा का तैसा स्वार्थ है, देखो ज्ञानशा बाहर में प्रवृत्ति का अनुसरण चलता है योग और उपयोग में, मन वचन काया के योग में और उपयोग में बाह्य प्रवृत्ति का अनुसरण चलता है, फिर भी उतना योग और उपयोग हमारे अंतरंग स्वास्थ्य को बाधा कर सकता नहीं है। अंतरंग में अव्यापाद स्थिति है, बाधा नहीं कर सकते कोई, उसमें तो स्वस्थ है, हम बराबर टिके हुए हैं, रहे हुए हैं। प्रवृत्ति में भीड़ बहुत है, इसलिए हमारे परिणमन में अस्वस्थता अंदर में आती है, तो बात नहीं है, वो तो अव्यापार स्थिति है, वहां किसी की पहुंच नहीं, हमारी साधक दशा तक प्रवृत्ति की पहुंच नहीं है, काम के भीड़ की पहुंच नहीं है, वहां तो वैसे की वैसे स्थिति है। गौ पड़े जाता है, मुख्य पड़े नहीं जाता, गौ पड़े जाता है, गौ पड़े का अंदर की जो ज्ञान धारा है तो वैसी की वैसी मजबूत रहती है, क्या कभी और मजबूताई को ग्रहण कर लेती है, ऐसा भी बनता है। एक दृष्टांत पूरी बेंच ने दिया है, एक छोटा सा लड़का है 5 साल का, अपनी माँ का साड़ी का पल्लू पकड़ कर बाजार में साथ साथ चल रहा है। उस वक्त बाजार में कोई ऐसा बाजार का एरिया आता है कि जहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाती है, बार बार उसको कोई भीड़ में टक्कर लगा देते हैं, हिल जाता है, वो क्या करता है, पल्लू को जोर से पकड़ेगा कि कभी गिर गया तो भी पल्लू हाथ से नहीं छूटे, उनको डर है कि अगर पल्लू हाथ से छूट गया और मैं मेरी माँ से अलग हो गया, फिर इतनी गिरदी में इतनी भीड़ में मैं कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ चली गई, मैं आगे पीछे हो गया, मेरी माँ के बिना मुझे चलेगा नहीं, तो भीड़ को देखते हुए पल्लू को जोर से मुट्ठी में पकड़ देता है, पकड़ा तो हुआ है और तेज मजबूती से पकड़ेगा। वैसे बाह्य उदय में भीड़ होती है ज्ञानी को, तो ज्ञानी की अपने आत्मा पर जो पकड़ है ये पकड़ और मजबूत हो जाती है, तो उसका प्रसार तेज होता है, मुमुक्षु को भी ऐसा होता है यथार्थ मुमुक्षुता में, तो ये ऐसा होना ये सहज और स्वाभाविक है, बच्चे को जैसा स्वाभाविक तौर से होता है ऐसे योग्यता में ऐसा होना ये सहज और स्वाभाविक है। जैसे वो बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई शारीरिक अशांति पीड़ा का प्रसंग आ गया, तो उस वक्त हम पीड़ा में बह जाएंगे या हम हमारे आत्मा से पकड़ करने लग जाएंगे या प्राप्त बोध है उसकी पकड़ में आ जाएंगे, क्या होना, जहाँ मुमुक्षुता यथार्थ होती है वहां तो उदय को गौण रूप से भोग लेना और हमारे आत्म कल्याण की दिशा में अधिक पकड़ हो जाना ये सहज और स्वाभाविक होता है, और ऐसा होने से निर्मलता बढ़ती है और मुमुक्षु जी मोक्ष मार्ग की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। तो अपनी दशा को बताते हुए कहा कि बहुत प्रवृत्ति है, तीव्र भीड़ वाली प्रवृत्ति है, फिर भी अंदर में जो हमारी अव्यापाद ज्ञान दशा है, स्थिति है, उसमें तो जैसा का तैसा स्पष्टपना है, उसमें कोई काम की भीड़ बढ़ जाने से वहां कोई विक्षेप हो जा गया हुआ है ऐसा तो बना नहीं है। ऐसी दशा अगर ज्ञानी की समझ में आ जाए तो इनके प्रति नतमस्तक हुए बिना
नहीं।
एक जगह पर ऐसा लिखा है कि हमने प्रवृत्ति में इतनी निद्रा की है कि शायद निवृत्ति में रहते तो इतनी निद्रा नहीं करते, उतनी निद्रा हमने प्रवृत्ति में की है। तो बहुत पुरुषार्थ बढ़ाया था, बढ़ गया था और काफी वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ चुके थे। अभी आखिर का पुरस्कार बाकी रहा, उसका स्वाध्याय कल करेंगे।